اللہ الرحمن الرحیم درود ہو محمد اور آل محمد پر سلام عرض کرتی ہوں اور صبح بخیر کہتی ہوں اپنے عزیز ناظرین کو اور خرم کو
سلام عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں اپنے پیارے ناظرین کی خدمت میں امید کرتا ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک فرسٹ کلاس ہوں گے آپ
انشاءاللہ اور ہم گرما گرم پروگرام لے کے ہیں اپنے ناظرین کے لیے
صبح زندگی
گرمی کے موسم میں
بالکل گرمی موسم ہے لیکن یہ ہے کہ یہ جو ہے آپ کو جو ہے پروگرام ٹھنڈا کر دے گا آپ کی گرمی جو ہے وہ آپ کے ذہن میں جو گرمی سورج جو پڑتا رہا ہے وہ انشاءاللہ جو ہے وہ اتر جائے گا اور یہ دعا کرتا ہوں کہ آج کا دن جو ہے آپ کا بالکل زبردست خوشیوں سے بھرا ہوا اور مثبت انرجی سے بھرا ہوا
بالکل اور ہمارے پروگرام سب کو اور بھی اچھی انرجی ملے
بالکل
اور انرجی کو برقرار رکھنے کے لیے اور صبح کو اور خوبصورت بنانے کے لیے ہم کیا کریں گے
ہم کریں گے جائیں گے اور ایک خوبصورت سی حدیث حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاحظہ فرمائیں گے اس کے بعد کیا کریں گے پھر ہم
اس کے بعد ناظرین خدمت میں
حاضر ہوں گے تو چلتے ہیں حدیث ملاحظہ فرماتے ہیں اور اس کے بعد میں خرم گردیزی اور ربوہ منصوری پروگرام صبح زندگی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے
جی ناظرین دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں اور میرے ذہن میں ایک سوال اٹھا کہ میں خرم سے فوراً پوچھوں خرم آپ اپنا آئیڈیل کیسے چنتے ہیں
آئیڈیل زندگی کے زندگی میں جو آئیڈیل دیکھیں زندگی میں جو آئیڈیل ہیں اس میں ایک جو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آئیڈیل ہوتا کیا ہے آئیڈیل کون ہے سب سے پہلے تو مجھے یہ سمجھنا ہے کہ آئیڈیل کے اندر یہ 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 خصوصیات ہونی چاہیے اگر میرے ذہن میں خصوصیات کا کانسیپٹ ہی واضح نہیں ہے مجھے پتہ ہی نہیں خصوصیات کیا ہوتی ہیں مجھے یہی پتہ نہیں ہے کہ جھوٹ بولنا برا ہے سچ بولنا اچھا ہے تو پھر تو میں آئیڈیل چوں تو سب سے پہلے سیڑھی ہے
اور ایک بات اور میں جو بتانا چاہوں گی آئیڈیل کا خود آئیڈیل کا مطلب جاننا بھی یہاں بہت ضروری ہے
ٹھیک ہے
ہم کس کو آئیڈیل بنا رہے ہیں
بالکل کون رہنما ہے ہمارا رہبر ہے تو ہے کیا اس کا کام کیا ہے ہماری زندگی میں
یہ بہت ہمارے ہفتے کا موضوع بھی یہی چل رہا ہے
ہمارا یہ چل رہا ہے بالکل تو بڑی اچھی آپ نے مجھے جو بھول گیا تھا تو آپ نے بتا دیا تو اچھا ہوگا
جی تو آپ نے ناظرین سے یہی کہیں گے کہ کوئی رائے ہو کوئی نظرات ہو اس موضوع کے بارے میں تو ہمیں ضرور بتائے گا ہم فیس بک پر آن لائن ہیں اور خرم آپ کے ساتھ مہمان کون آج
جی میرے ساتھ جو ہے ڈاکٹر ظہیر عباس ہم جو ہے پچھلے ہفتے سے بول چیخ چیخ کے بتا رہے ہیں اپنے ناظرین کو یہ جو ہے لائٹ تھوڑی کمزور ہو گئی تھی اچھا لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے بہرحال یہ کہ ڈاکٹر ظہیر عباس کا ہم نے بتایا کہ ڈاکٹر ظہیر عباس کو ہم نے زبردستی آج پھر ہم نے بلا لیا کیونکہ وہ جو موضوع ان کا تھا
بہت اہم موضوع تھا
اور سوال جو ہے وہ ایک سوال فیس بک ابھی بھی ان باکس میں جو ہے بغیر
کچھ سوال ہیں جو مجھے ضرور ڈاکٹر ظہیر صاحب سے پوچھنا ہے اور بہت اہم سوال جو ٹوٹکے ہم گھر میں آزماتے ہیں اس بارے میں
زبردست
اور میرے ساتھ فون لائن پر انشاءاللہ سید آن محمد نقوی صاحب ہوں گے ہمارے مذہبی امور کے ماہر ہیں
اور ہفتے کے موضوع کے بارے میں ان سے بات کریں گے انشاءاللہ چلتے ہیں ابھی وقت ہوا ہے سیب صاحبہ کی میٹھی میٹھی اور مفید اور مزیدار باتیں سننے کا کس موضوع کے بارے میں بتانے لگی ہیں وہ
زیتون
کے بارے میں واہ زیتون
بہت مزیدار پھل
مزیدار اور کتنے فائدے ہیں
بالکل اور فائدے جو کتنے ہیں اور کتنے سارے فائدے اور کتنے مزیدار ہے یہ سیب صاحبہ ہم کو جو ہے
بالکل
ابھی بتائیں گے جی بالکل
السلام علیکم زیتون کی بات کرنے جا رہے ہیں ہم زیتون کا درخت تقریباً 3 میٹر لمبا ہوتا ہے لیکن مناسب آب و ہوا میں اس کی لمبائی اور تنے کی موٹائی میں کافی فرق آ جاتا ہے زیتون عام طور پر موسم گرما کے آغاز میں پھول دینے لگتا ہے اسی کے ساتھ پھل بھی ظاہر ہونے لگتے ہیں اور موسم ختم ہونے تک پھل تیار بھی ہو جاتے ہیں شروع شروع میں زیتون سبز ہوتے ہیں پھر دھیرے دھیرے ان کا رنگ بدلنے لگتا ہے اور وہ بیگنی پھر کتھئی اور آخر میں سیاہ یا بالکل کالے ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ جب پھل درخت سے اتارا جاتا ہے تو اس وقت زیتون بالکل کالے ہوتے ہیں پوری طرح تیار زیتون قدیم طب کے مطابق گرم اور قابض ہوتا ہے جبکہ کچا پھل سرد اور خشک مانا جاتا ہے زیتون کے پتے گرم و خشک ہوتے ہیں اور ان کو چائے کی طرح دم کر کے پینے سے بلڈ پریشر نیچے آتا ہے زیتون کے تیل کا استعمال دل کے امراض اور سرطان جیسی موذی بیماریوں کو روکتا ہے اور کھانے میں اس کا استعمال بہت مفید ہوتا ہے روغن زیتون بھوک بڑھاتا ہے زیتون کے پتوں کا جوشاندہ دانت کے درد میں بہت فائدہ کرتا ہے زیتون کا تیل کولیسٹرول کو کم کرنے کے علاوہ دل کی رگوں میں کولیسٹرول کو جمنے بھی نہیں دیتا اس طرح رگیں تنگ نہیں ہونے پاتی اگر آپ اپنی جلد کو پرکشش اور شاداب رکھنا چاہتے ہیں تو جان لیجئے کہ زیتون سے بہتر کوئی چیز ملنا بہت مشکل ہے یوں تو اس کا استعمال میک اپ کے تقریباً سبھی لوازمات میں ہوتا ہے لیکن اگر آپ کوئی خالص قدرتی مادہ انتخاب کرنا چاہیں تو زیتون کے تیل کی مالش اپنی جلد پر کریں یہ جلد کی خشکی کو دور کرتا ہے ورم اگر کہیں پر ہوتا ہے تو اس کو بھی دور کرتا ہے اور مناسب مقدار میں رطوبت کو جلد میں پہنچا دیتا ہے اس لیے ہماری رائے یہ ہے کہ آپ روغن بھی استعمال کریں یعنی روغن زیتون اور پھل بھی استعمال کریں اور اپنے ہر سلاد میں روغن زیتون ضرور ڈالیں
جی عزیز ناظرین، دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کی اپنے پروگرام صبح زندگی میں، اور امید کریں گے کہ ہمارا ساتھ پروگرام کے آخر تک بنا رہے گا۔ زیتون کے فوائد کے بارے میں آپ نے سنا، زیتون کا ذکر تو قرآن میں بھی آ چکا ہے، تو میں کیا کہوں، کچھ نہ ہی کہوں تو بہتر ہے۔ فوراً چلتے ہیں خورم کی طرف تاکہ اپنے گفتگو کے سیگمنٹ کو آغاز کر سکیں۔ جی خورم،
بہت شکریہ کہ آپ نے کچھ نہیں کہا، ہمارے پاس وقت زیادہ ہوگا کہ ہم لوگ زیادہ بات کر سکیں۔ اچھا، یہ جو ہے ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ مجھے بھی احساس ہو رہا ہے کہ میرے بھی تھوڑے بال گر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے میں بہت راغب تھا کہ ڈاکٹر صاحب کو دوبارہ بلایا جائے پروگرام میں، ان سے بات کیجیے اور گنجے پن کے بعد۔ جی ناظرین، ڈاکٹر ظہیر عباس ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور جیسے کہ ہم نے بتایا بھی ہے پچھلے ہفتے بھی آپ کو بتایا تھا کہ آج ہم نے انہیں دوبارہ دعوت دی ہے تاکہ وہ جو ہے یہ جو گنجے پن کا جو موضوع تھا، بال گرنے، بالوں کو کمزور ہونا، اس کے اوپر ڈاکٹر صاحب بات کر سکیں۔ اور رباب، ہمارے پاس کچھ سوال بھی جو ہیں وہ ان باکس میں۔
بس یہ مہادی صاحب کا جو سوال تھا، میں بتا دی چلوں، انہوں نے لکھا تھا ان کے بات بہت پچھلی بار انہوں نے بتایا ہلکے ہو گئے، ہلکے سے مطلب بہت نازک اور پتلے ہو گئے اور ٹوٹ رہے ہیں ان کے بال۔
یہ بالکل اتفاقاً جو ہے میں ہر روز دیکھتا تھا ان کا یہ ان باکس میں میسج، دوبارہ وہ ان سے پوچھیں گے ہم۔ ڈاکٹر صاحب سے سلام عرض کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب
وعلیکم،
ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟
جی آپ کیسے ہیں؟
اللہ کا شکر ڈاکٹر صاحب، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے ایک بار پھر ٹائم نکالا، ہمیں پتا ہے کہ آپ کا جو ہے امتحانات کچھ خطرناک قسم کے امتحانات نزدیک ہیں، اور جو ہے پر ٹائم نہیں ہوتا آپ کے پاس، لیکن یہ بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب گنجے پن کے بارے میں سب سے پہلے تو یہ بشیر صاحب کا جو ہے جواب دے دیں، کیونکہ یہ جو ہے پچھلے ہفتے اسی پروگرام میں انہوں نے سوال بھیج دیا تھا، انہوں نے کہا تھا ہلکے ہو گئے، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہلکے مطلب یہ کہ بہت ہی نازک، جیسے وہ بالکل جو
ہٹے ایسے
جو ہیں
بال۔ جی سب سے پہلے تو میں وہ آپ کی جو بات ہے اس کو آگے کمپلیٹ کرتا چلوں، جو آپ نے کہا کہ ہم بھی اس کا شکار ہیں، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ 50% جو مرد حضرات ہیں، 50% وہ تقریباً اس کا شکار ہے، یعنی 40 ایئر سے پہلے ہی، یعنی ابھی ان کی ایج جو ہے وہ 40 سال نہیں ہوئی، اس حد تک یعنی یہ زیادہ ہے کہ 50% جو ہے وہ اس میں انوالو ہیں، لیکن 40 ایئرس کے بعد پھر ہر 10 سال اگر گزرتے جائیں تو یہ ریشو جو ہے اور بڑھتی چلی جاتی ہے، یعنی ایسا پاسیبل ہے کہ جب آپ کی ایج 70 ایئرز ہو جائے گی تو اس وقت تقریباً آپ 80% جو ہے وہ
لوگ جو ہیں ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہو سکتا ہے،
بالکل یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، یعنی یہ بہت ہی کامن چیز ہے، لیکن فیمیلز کے اندر پھر اس کی جو پرسنٹیج ہے وہ کم ہے،
ٹھیک ہے،
اس کا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ 40 ایئر سے پہلے تقریباً 15% ہے، اور اس کے بعد 40 سال کے بعد پھر ان کی جو ہے وہ بھی تقریباً جو پرسنٹیج ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور تقریباً 50% تک وہ بھی پہنچ جاتے ہیں۔
اچھا ڈاکٹر صاحب، یہیں پر ایک جلدی سے میں سوال پوچھ لوں، جس طرح یہ مرد اور عورت کا فرق ہے بال گرنے کے سلسلے میں، اس کا مطلب اس میں جو ہارمون کا آپ نے ایک بار ذکر کیا تھا، اس کا ایک بہت بڑا رول ہے؟
بالکل، اس کا بہت بڑا رول ہے، کیونکہ اینڈروجنز جو ہیں، جو کہ مردانہ ہارمونز ہیں، وہ مردوں کے اندر زیادہ ہیں، عورتوں کے اندر بھی ہیں، لیکن اس کی مقدار بہت ہی کم ہے،
کنٹرول ہوئے ہیں،
بالکل یہی وجہ ہے کہ عورتوں کے اندر جو ہے یہ چیز کم دیکھنے میں نظر آتی ہے، اور مردوں میں جو ہے یہ بہت ہی کامن ہے۔
صحیح ہے، ٹھیک۔
اور جہاں تک ان کے سوال کا جو ہے وہ تعلق ہے، ان کے بال جو ہے جس طرح کہ انہوں نے کہا کہ بہت ہی پتلے اور بہت ہی آپ کہہ لیں کہ بریک ہو رہے ہیں، اور ایزیلی جو ہے وہ بریٹلنیس ان کے اندر آ گئی ہے، تو یہ چیز دیکھیں، جس طرح کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی اشارہ کیا تھا کہ مختلف جو فارمیٹس ہیں ہمارے ہیئر لاس کے، اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی بیک گراؤنڈ میں وجہ کیا ہو سکتی ہے،
ٹھیک ہے۔
ایک جو ہے ہم نے اس چیز کا ذکر کیا کہ اگر جو ہے آپ کا فرنٹل ایریا، سامنے والا جو حصہ ہے، وہاں سے بال گر رہے ہوں، اور اگر آپ کے جو پیچھے چھوٹی والا ایریا ہے وہاں سے گر رہے ہوں، تو یہ جو ہے آپ کی اس جو بال جو آپ کے پتلے ہو رہے ہیں یا جو گر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اینڈروجنیٹک ایلوپیشیا ہے آپ کو،
ٹھیک ہے۔
لیکن اگر اس طرح کا کوئی فارمیٹ جو ہے آپ کے اندر نظر نہیں آ رہا، اور پورے سر کے بال جو ہیں وہ آپ کہہ لیں کم و بیش ان میں جو ہے مختلف چینجز آ رہی ہیں اور وہ گر رہے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے اندر ٹیلوجن ایفلوویم ہے۔ ٹیلوجن ایفلوویم ایک اور بیماری ہے، یہ بھی بہت کامن ہے،
ٹھیک ہے،
لیکن اس کے اندر جو ہے وہ اور بہت سارے ریزن ہیں، جس طرح کہ ہم نے تھوڑا سا اس بیماری کے بارے میں اشارہ کیا تھا پچھلے پروگرام میں، کہ مختلف جو میڈیسنز ہیں ان کے لینے کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے، مختلف جو ٹینشن سٹریسز، اور چاہے وہ سٹریس جو ہے وہ آپ کی ایموشنل سٹریسز ہوں، چاہے وہ کام کے سلسلے میں ہوں، چاہے وہ مختلف اور سٹریسز ہوں، جس طرح کہ فار ایگزامپل کچھ ایسے حضرات ہیں جو آپ کہہ لیں کہ ڈپریشن کا شکار ہیں، اس کی وجہ سے یہ مسئلہ پیش آ سکتا ہے، یا پھر ایسا ہے کہ کچھ اور ان کو بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے یہ مسئلہ پیش آ سکتا ہے، جس طرح انیمیا ہے، جس طرح کہ ڈائبٹیز ہے، تو مختلف جو فیکٹرز ہیں ان کی وجہ سے جو سٹریس پیش آتا ہے، اس کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ پیش آ سکتا ہے۔ تو یہ جو بالوں کا کم ہونا یا پتلا ہونا یا گرنا، اس کے پیچھے جو ہے وہ بہت ساری ریزنز ہو سکتی ہیں، ان کو بہتر یہ ہے کہ یہ ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں، ڈرمیٹولوجسٹ سے، تاکہ ان کی پراپر جو ہے وہ ڈائیگنوسس ہو، और उसकी बेस के ऊपर जो है इनको जो मुख्तलिफ प्रेस्क्रिप्शन हैं जो दवाइयाँ हैं उनको तजवीज़ की जा सकें, क्योंकि अगर मैं ऐसे बताऊँ और आप बगैर इमेज के या बगैर तस्वीर के तो ये हो सकता है कि थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाए या इनकी डायग्नोसिस जो है हो सकता है इनको कुछ टेस्ट जो ब्लड टेस्ट हैं वो करवाने पड़े, तो बेहतर यह है कि डॉक्टर से कंसल्ट करें ताकि उसके बिल्कुल
स्किन स्पेशलिस्ट से जो है रुजू करें। बहरहाल जो भी बहरहाल आपने फिर भी जो कुछ जो है वजूहत बता दी कि स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, जेनेटिक वजूहत हो सकती हैं, पर उनका भी आप ख्याल रख सकते हैं, लेकिन जो है बहरहाल स्किन स्पेशलिस्ट जो है मौजूद हैं उनसे गुफ्तगू कर सकते हैं। गुफ्तगू डॉक्टर ज़हीर अब्बास से हमारी बालों के गिरने के बारे में, प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी में जारी रहेगी। यहाँ पर हम चलेंगे रुबाब की तरफ और रुबाब जो है आपको पता है कहाँ पर मैं लेके जा रही हूँ, मुझे पता है, और वो लेके जा रही हैं हमें कि आज जो है कुछ खाने पीने की कुछ नई रेसिपी सीखने के लिए, ठीक है ना। मैंने
जी बहुत शुक्रिया, मुझे थोड़ा सरप्राइज खराब कर दिया, मैं बोलना चाहती थी कि आपकी बेहतरीन गुफ्तगू में थोड़ा तड़का लगाना चाहिए,
तड़का लगाने वाली
चलिए बिल्कुल, तो आपने लगाने नहीं दिया वो तड़का,
चलो तड़का अगले हफ्ते तड़का लगा लीजिएगा आप
जी। खैर कोई बात नहीं, नाज़रीन चलते हैं अली वरियानी के पास, देखते हैं आज वो हमें क्या पकाना सिखा रहे हैं।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आज सुबह भी आप तंदुरुस्ती, शादाबी और मुस्कुराहट के साथ उठे हों। इंशाल्लाह के हमारी जो प्रोग्राम्स है वो आपके लिए मुफीद साबित हुई होंगी। आज तक जो प्रोग्राम्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो सरदार जी कैसे हैं आप?
मेहरबानी, शुक्रिया। आप
तो आज आप क्या सिखाने वाले हैं?
ये मूंगी की दाल है, ये बताएंगे आपको ये कैसे बनती
है। इंडिया पाकिस्तान में दोनों
मशहूर दाल है, इंडिया पाकिस्तान की
मूंग की दाल।
मूंग की दाल,
अच्छा जी। तो मैं आपके लिए बनाऊंगा, आप मुझे बस ये बताएं कि मुझे करना क्या है। पहले इंग्रेडिएंट्स आप मुझे बताएं कि क्या चाहिए।
देखो पहले तो सबसे पहले दाल भिगोनी भिगो के रखनी चाहिए इसको,
ये एक रात पहले से,
ये दो तीन चार घंटे पहले बनाने से पहले, हाँ चार घंटे काफी है पानी में डालकर।
मूंग की दाल जो है ये आप बाजार से लेके चार पाँच घंटों के लिए भिगो के
रखें।
अच्छा जी,
उसके बाद जो सॉस बनाते हैं इसका, जो तड़का लगाते हैं इसको, वो आपको मैंने पहले बताया है कैसे, प्याज होते हैं उसमें, लहसुन होता है और अदरक होता है
जी,
उसको थोड़ा सा फ्राई करके जैसे अच्छा। मैंने पहले बताया उसको बनाकर फिर हाँ। वो इसके दाल इसके अंदर
अच्छा। और क्या चाहिए हमें मसाले? कुछ चाहिए
मसाले, क्यों नहीं, वो जो तड़के वाले मसाले जैसे हल्दी चाहिए, मिर्च है।
अच्छा ये हल्दी है,
ये हल्दी है,
ये
मिर्च है, लाल मिर्च है,
नमक,
और ये नमक है,
जीरा,
और ये जीरा साबुत है,
अच्छा,
और ये लहसुन है,
लहसुन,
और ये मसाला है,
मसाला गरम मसाला,
गरम मसाला, ये गरम मसाला है, और ये सूखा धनिया है,
खुश्कशुदा है। चलो जी सरदार जी, तो सबसे पहले क्या करना
होगा? पहले जो मूंगी की दाल है वो कावला में डालो, उसके कावला में ऊपर रखो।
हाँ जी, तो इसमें ये डालो,
दाल डालो इसमें, पानी डालना है इसमें,
ये पूरा का पूरा डाल दो।
हाँ पूरा डाल दो, कोई बात।
अच्छा जी, ये पूरा
ये भिगोई हुई है इसमें, इसको अभी पानी पानी में डालना है।
अच्छा कितना डालूं?
थोड़ा सा डालो, इतना पानी, एक डाल दो, एक और डालो।
अच्छा जी,
एक और डाल दो,
एक
पानी, क्यों ये दाल फूलती है ना, इसमें पानी ज्यादा डालो, थोड़ा सा पानी और डाल दो, एक दो कोई बात।
चलो ये हो गए दो कप।
हाँ, दो कप।
अच्छा जी, ये दो कप पानी हो गए,
इसको अभी
मैं इसको
इस रख दो इसमें बस।
अच्छा,
और इसका ढक्कन ऊपर ढक दो इसमें।
अच्छा जी, और
इसको अभी जितने तक बनती नहीं पकने दो।
अच्छा, इसमें मसाले कुछ नहीं डालना?
नहीं कुछ नहीं डालना,
कुछ नहीं डालना,
कुछ नहीं डालना, पहले उबालनी है।
और कितना उबालना है?
ये 15-20 मिनट लग जाते हैं बनने को, अगर ज्यादा भीगी हो तो जल्दी बन जाती, नहीं तो 15-20 मिनट इसमें लग जाते।
अच्छा, इसके बाद खा सकते हैं इसको?
ना ना, फिर उसके बाद ऐसे तो
और क्या करना चाहिए?
और उसके बाद जो जैसे मैंने आपको पहले बताया है की जो प्याज लहसुन वगैरह वो उसका तड़का लगाएंगे, उसके बाद तड़का लगा कर इसको दाल में फिर उसमें डालेंगे, और फिर थोड़ा 5-10 मिनट 15 मिनट बनेगी और फिर खाने के लिए।
फिलहाल इजाज़त दीजिए, हम वापस आएंगे तड़का बना के आपको सिखाएंगे। तो नाज़रीन हम फिर वापस आ गए सुबह ज़िंदगी के इस कुकिंग प्रोग्राम में, आपको फिर से खुश आमदीद कहता हूँ। तो ब्रेक से पहले हम क्या कर रहे थे, ये मूँग की दाल जो है वो हम
मूँग की दाल अभी उबल गई है, बन गई है, इसमें थोड़ा नमक डालेंगे,
नमक
जितना जरूरत है, ये थोड़ा सा नमक है।
हाँ,
और नमक डालकर इसको हलाएं।
अच्छा, इसको हलाना होगा इसके साथ।
इसको हाँ। हलाने के बाद
हाँ।
जो ये तड़का लगा हुआ है ना।
हाँ, ये तड़का आपने पहले
जो पहले मैंने आपको बताया था।
हाँ जी,
कि इसमें प्याज और लहसुन और मसाला वगैरह पाकर ये बना हुआ है जो।
अच्छा, पहले प्याज लहसुन
और मसाले वगैरह सब इसमें है। और अभी जो बन गया वो इसको मैं डालकर इसको
पूरा का पूरा डाल,
पूरा का डाल दे।
अच्छा अच्छा, ये पूरा का पूरा मैं डाल रहा हूँ।
और अभी इसको हलाओ थोड़ा थोड़ा।
अच्छा अच्छा, इसको भी दोनों चम्मचों से, एक चम्मच से ये इधर रखते हैं, और इसको हिलाना होगा,
ये मिक्स हो जाए। इसका
कलर इसका ऑरेंज हो रहा है पूरा का पूरा,
कलर का फर्क पड़ेगा थोड़ा सा ज़्यादा। हाँ,
ये लाल हो रहा है
और कलर का फर्क थोड़ा सा पड़ेगा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। हाँ। और ये अभी दाल,
ये सारा खुशबू जो है वो मसाले की वजह से,
मसाले की वजह से है। वो अभी दाल बन गई है,
ये बन गई,
ये बन गई है,
खा सकते हैं इसको,
क्यों नहीं खा सकते हैं।
तो मैं इसको सर्व करता हूँ। चलो जी, बन गई है। तो हमारे पास बड़ा चम्मच किचन है, तो
ये इसमें डालो और
ये थोड़ा सा इस साइड पर रखते हैं। चलो जी, ये चीज़ें ज़रूर किचन में इस्तेमाल कीजिएगा, हाथ चल जाएंगे। ओए, वोल्केनो की तरह है, देखें। ओए होए होए ओके। अच्छा जी, काफ़ी है ये एक बंदे के लिए?
हाँ, काफ़ी है एक बंदे।
अच्छा, मेरा पेट भर जाएगा इससे?
क्यों नहीं।
ओ यार, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है।
और इसमें थोड़ा सा मक्खन डालोगे, जो बटर पड़ा है?
हाँ जी, मक्खन डालना है।
हाँ, इसको खोल कर।
कितना मक्खन डालना है?
पूरा भी डाल दो, इसमें ज़्यादा नहीं है ये।
पूरा
पूरा डाल।
ओ यार, कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा मुझे।
नहीं नहीं, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल नहीं, पंजाबियों का कोलेस्ट्रॉल होगा।
चलो जी, पूरा का पूरा मक्खन जो है
इसमें
वो इसके ऊपर डालेंगे पूरा का पूरा,
और वो चमचे के साथ हलाएं इसको।
हिलाना भी होगा?
थोड़ा सा हिला दें।
इसके ऊपर डालूं?
हाँ, ऊपर डाल दो।
अच्छा,
अभी ये खाने के लिए तैयार है। इसको रोटी के साथ खा सकते हैं, चावल के साथ खा सकते हैं, रोटी आपके सामने पड़ी है।
चम्मच के साथ तो नहीं खाते हैं ना,
चम्मच के टेस्ट कर सकते
हैं। ये रोटी भी बनाई है हमने। चलो जी, ये हो गई हमारी जो है नींबू भी।
इसका जो दाल मखनी में बहुत
यार। अच्छा जी, नींबू डालना है। अच्छा, नींबू भी डालते हैं यहाँ पे, और फूल भी यहाँ पे डालते हैं। चलो जी, हो गई, तैयार है?
बिल्कुल तैयार है।
तो ये चीज़ें मैं उठाता हूँ यहाँ से, ठीक है। और ये हमारा आज का खाना।
हाँ, तैयार है? बिल्कुल बिल्कुल तैयार है।
बहुत बहुत शुक्रिया, आज अच्छी रेसिपी आपने अच्छी बताई है आज हमको। तो नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये बहुत ही मज़ेदार, लजीज और खुशबू खाना है। ये मैं ही सिर्फ यहाँ कह सकता हूँ। ये
आपको दाल मखनी, इसका नाम दाल मखनी है।
दाल मखनी, दाल मखनी जो है आप ले सकते हैं, बना सकते हैं घर में आसानी से, उतना टाइम भी नहीं लगता है। तो ये ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि मैं जब कहता हूँ खुशबू, लाजवाब और मज़ेदार खाना है, मेरा मतलब क्या है। तो अगले प्रोग्राम तक मुझे और सरदार सिंह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।
जी नाज़रीन, दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। अली वरियानी के साथ मूंग की गर्मा गर्म दाल बनाना आपने सीखी, और उम्मीद करता है आपको ये दाल बनाना पसंद आई होगी। और जिस तरह अली वरियानी ने खा के अपने हाथ को यूं किया तो पता चल गया भाई बहुत ही मज़ेदार थी।
वो जो है, जो चीज़ भी खाते हैं वो यूं ही करते हैं।
अच्छा,
वो ज़्यादा उनके लिए फ़र्क नहीं करता। लेकिन ये कि ये ईरानी स्टाइल से बहरहाल इन्होंने जो है बनाई थी, और ये ईरानी जो है नाश्ते में इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं, और कहते हैं कि आयरन से सरशार भरा हुआ होता है और बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। अगर आप ये इसका नाश्ता कर लें तो आपको जो है 12 एक बजे 2 बजे तक बिल्कुल भूख नहीं लगती, बहुत ज़बरदस्त।
खुर्रम, अगर आप इजाज़त दें, क्योंकि मैंने प्रोग्राम के शुरू में भी कहा था कि मुझे डॉक्टर ज़हीर पास एक सवाल पूछना है। डॉक्टर साहब, मुझे ये घरेलू टोटकों के बारे में पूछना है। कहते हैं जैतून के तेल को आप पता नहीं किसी चीज़ के साथ मिला के सर पर लगाइए तो बाल का गिरना बंद हो जाता है। रीठा आमला का इस्तेमाल भी इस तरह। आए टोटके डॉक्टर साहब यानी होते हैं, सही होते हैं क्या, ये बाल गिरने से यानी ये
बचाएंगे,
बचाते हैं या नहीं?
बिल्कुल जी, बिल्कुल इनका रोल है, और बाल जो हैं उनको स्टिमुलेट करते हैं उसकी ग्रोथ को।
ठीक है,
कोई भी आप जितने ये सरसों का तेल है या जैतून का तेल है, ये जितने भी तेल हैं ये बालों को स्टिमुलेट करते हैं। यानी इनफेक्ट होता क्या है कि वेजोडाइलेशन जो है या जो रगें हैं उनको थोड़ा सा खोलते हैं।
ठीक है,
जिस तरह की असर माइनोक्सिडिल का है,
ठीक है,
जिस तरह के हमने पिछले प्रोग्राम में इशारा किया था, उसी से मिलता जुलता जो है वो उनमें से एक जो माइनोक्सिडिल जो है उसके तो मल्टी फंक्शन हैं,
बहुत से काम हैं,
बहुत से हैं, लेकिन इसका जो है रोल यही है कि ये बालों को थोड़ा सा वो स्टिमुलेशन मिलती है। और बाल जो है, ऐसा नहीं है कि आपके बाल जो है वो अगर उनको वो किसी बीमारी में मुबतला हो चुके हैं तो इन टोटकों की वजह से वो गिरना रुक जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये कि थोड़ी सी उनको स्टिमुलेशन जो मिलती है उससे बाल जो है उनकी गिरने की जो परसेंटेज है वो कम हो सकती है।
ये ड्रगिंग डॉक्टर साहब कहाँ की, यानी
सर के अंदर जो बाल हैं हमारे, बाल हमारा हर बाल जो है उसके साथ मुख्तलिफ जो है वो आप कह लें कि रगे हैं उसके अंदर, एक जो मसल है यानी एक उसके अंदर जो है बिल्कुल हर जो बाल है उसका अलग से पट्टा है, और यही वजह और यही जो पट्टा है ये बायस बनता है कि आपके बाल जो हैं वो मुख्तलिफ स्टाइल में या आप खड़े कर सकते हैं या उनको बिठा सकते हैं
बिल्कुल।
ये सारे जो इसके इसके पीछे जो बैकग्राउंड है वो उसी मसल की वजह से है, वो जो पट्टा उसके साथ हर बाल जो है उसके साथ एक
बड़ी दिलचस्प बात है। अच्छा, इसका मतलब डॉक्टर जिनके बाल जो है वो सीधे खड़े नहीं होते उनके पट्टे जो है कमजोर है।
देखें उसमें जो है खुद जो बाल है वो भी कमजोर है, यही जो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है जिसकी हमने अभी तक बात की है, इसके अंदर भी चूंकि बाल जो हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, उनका जो डायमीटर है वो भी कम हो जाता है, यानी मोटापा जो है वो उनका कम हो जाता है, यही वजह है कि वो बाल उनके अंदर अब जो है वो जान नहीं रही, पहले की तरह जो स्ट्रेंथ थी वो ख़त्म हो गई है,
ठीक है,
और उनके अंदर जो केराटीन थी या जो जो ऐसा आप कह लें एक प्रोटीन है जो कि बाल को स्ट्रेंथ देता है
मजबूती देता
वो जो है जब कम हो जाता है तो इसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता बाल जो हैं वो उनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं रहती और वो बाल आप चाहे वो आप उनको खड़ा करना चाहें तो वो नहीं खड़े रह सकते।
अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो तेल खुद जो है तेल, इसका एक अमल जो है वो लुब्रिकेट करना कि वो जो उसको वो जो गीला सा हो जाता है और वो तेल सा, इसका खुद तेल का बाल बाल के ऊपर रहना 3-4 घंटे कोई असर है इसका?
बिल्कुल, इस हवाले से भी ऐसे अफराद जिनको डेंड्रफ है या मुख्तलिफ खुश्की और इस तरह की चीज़ें उनके अंदर ये भी बिल्कुल मुफीद है, क्योंकि सेबोरिक डर्माटाइटिस पिछले एक प्रोग्राम में इसकी तरफ हमने इशारा किया था डेंड्रफ के हवाले से, डेंड्रफ खुद जो है बालों को कमज़ोर करती है, बालों को गिरने में जो है इसका भी रोल है, यही वजह है कि अगर आप जो है वो जैतून का तेल या सरसों का तेल या कोई भी तेल आप लगाते हैं उसकी वजह से डेंड्रफ जो है वो कम होगी, और डेंड्रफ के कम होने की वजह से इनडायरेक्ट जो इफेक्ट है वो बालों के ऊपर होगा और बाल जो है वो हो सकता है आपके गिरना कम हो जाए।
डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, गुफ्तगू जारी रखेंगे हम लोग नाज़रीन। डॉक्टर ज़हीर अब्बास से हमारी गुफ्तगू चल रही है बालों के गिरने के बारे में और घरेलू टोटके के बारे में भी डॉक्टर साहब ने बताया कि फ़ायदेमंद हैं, लेकिन उनका ऐसा अगर कोई किसी बीमारी में आपके बाल आपका जो जिल्द है सर की वो मुबतला है तो उसमें वो शायद उस तरह मदद ना कर सकें जिस तरह एक स्किन स्पेशलिस्ट आपकी मदद कर सके। चलते हैं रुबाब के पास। जी रुबाब
जी, बहुत शुक्रिया खुर्रम, बहुत ही बेहतरीन गुफ्तगू चल रही है आपकी, लेकिन स्टूडियो के माहौल को थोड़ा सा बदल देते हैं और चलते हैं माजियार असरी साहब की आवाज़ में खूबसूरत तराना सुनते हैं और फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, माज़ियार असरी साहब की आवाज़ में खूबसूरत तराना खूबसूरत से मनाज़र के साथ आपने मुलाहिज़ा फरमाया, उम्मीद करते आपको पसंद आएगा। डॉक्टर ज़हीर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद है और बाल गिरने की वजह भाई क्यों गिरते हैं किस लिए गिरते हैं ये इसी बारे में उनसे बात करें, फ़ौरन चलते हैं खुर्रम के पास। जी खुर्रम।
बहुत शुक्रिया रुबाब जी, बिल्कुल, और मैं भी ये बताते चलूँ कि हमारे नाज़रीन जो भी प्रोग्राम मुलाहिज़ा फरमा रहे कोई सवाल आप पूछना चाहें facebook.com/SUT Morning Show जो है हमारा पेज है, आप अभी के अभी कमेंट भेजें सवाल की सूरत में इनबॉक्स में भेजें और हम जो है डॉक्टर साहब से सवाल पूछेंगे।
और खुर्रम एक सवाल हमारे पास
यहाँ
पे और सवाल कुछ इस तरह से है, मैं खुलासा कर देती हूँ सवाल का कि इनके बाल जो थे वो रंग से पहले बहुत हेल्दी और शाइनी और खूबसूरत थे,
कलर
रंग जी उन्होंने जो डाई किया अपने बालों को तो उनके बाल गिरना शुरू हो गए और रूखे और सूखे हो गए, तो क्या करें?
बड़ा जो है
खवातीन में बड़ा मसला पेश आता है।
जी बिल्कुल, ये खवातीन के हमेशा ये मसाइल होते हैं,
ठीक है,
और हमेशा हम इनको रिकमेंड करते हैं कि ये काम जो है इससे आपके बाल वीक होंगे,
ठीक है,
उनके अंदर ब्रेकेज आएगा, लेकिन हमेशा जो है ये अपना काम जो है वो करते
चलता रहता है। अच्छा, सही, ठीक है,
ये हमेशा हमारी जो है वो पेशेंट्स के साथ हमेशा इसकी डिस्कशन होती है और मैं हमेशा वो कहता हूँ कि मैं ये कहूँगा कि आप ऐसा नहीं करें लेकिन आपने करना है,
ठीक है। अच्छा,
तो इनफैक्ट होता क्या है कि इसमें बाल जो है उसके अंदर जो प्रोटीन्स हैं उनको जब कहते हैं डीकलोराइज करना,
जी जी बिल्कुल,
तो उसके अंदर जो आप कह लें कुछ आयंस होते हैं हमारे बाल जो हैं उसके अंदर एक चार्ज होता है, आपने देखा होगा कि जब आप बालों को कंघी करते हैं तो उसके अंदर एक नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की वजह से बाल जो है वो उसकी तरफ खींचते हैं,
चार्ज आ जाता है बालों में,
ये बालों के अंदर एक जो चार्ज होता है वो आप कह लें कि तकरीबन खत्म हो जाता है।
अच्छा,
बालों के अंदर जो है वो ब्रिटलनेस आ जाती है, यानी उसके अंदर और उसके यानी वो ब्रेकेज जो है
बिल्कुल से
बिल्कुल वो हो जाते हैं, और यही वजह है कि आहिस्ता आहिस्ता बालों की जो स्ट्रेंथ है इस काम की वजह से और रिपीटेड अगर आप ये काम जो है वो चंद बार करें तो उससे जो है वो बाल आपके बहुत कमजोर हो जाएंगे।
अच्छा,
और ये बाल जो है अब इसमें जो है आप कह लें कि बीमारी एज सच नहीं है, इसको ऐसा नहीं है कि इनको टेलोजन एफ्लुवियम है या एंड्रोजेनेटिक एलोपीशिया है, लेकिन इनके इस काम की वजह से हो सकता है कि आप एक इस बीमारी की तरफ अपने आप को पुश कर रहे हैं,
ठीक है, सही है।
और यही वजह है कि आहिस्ता आहिस्ता बाल जो है वो बहुत ही कम यानी गिर रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो एक ख़ास पैटर्न या एक फॉर्मेट की शक्ल में अपने आप को बीमारी की शक्ल में हो सकता है आपको शो करें।
ठीक है,
यही वजह है कि आपको अगर जो है अपने बालों को मजबूत रखना है तो आपको चाहिए कि रंग नहीं करें, डिकलोरेज करना जो है वो ठीक नहीं है।
ठीक है,
इसी तरह कुछ और जो काम है हमारे आमतौर पर रूटीन में जो होते हैं उनके बारे में मैं बताता चलूँ। एक तो ये हो गया कि रंग करना जो है वो बालों को वीक करता है।
ठीक है,
इसके अलावा जो हम ड्राई क्लीनर क्या इसको कहते हैं, उसका जो इस्तेमाल है उसकी वजह से खास तौर पे अगर वो बहुत ही हार्ट जो है
गर्म लेवल पे रखा
उसको रखा जाए तो उससे जो है बाल जो है बहुत वीक हो सकते हैं। इसलिए चाहिए उन ऐसे अफराद को चाहिए जो कि इसका इस्तेमाल करते हैं ऐसा एक जो है वो उसकी कह लें कि सेटअप उसका रखें कि बहुत ज़्यादा जो है वो हीट या गर्म नहीं हो।
ठीक है,
उसके अलावा कुछ ऐसे शैम्पूज़ हैं जो कि जिनका इम्प्रॉपर जो इस्तेमाल है उसकी वजह से ये बाल जो है वो गिर सकते हैं। ख़ास तौर पे बहुत ही जो सस्ते और आम जो आप कह लें कि अप्रूव्ड शैम्पूज़
नहीं है
उनके इस्तेमाल की वजह से ये मसला पेश आ सकता है क्योंकि उनके अंदर जो है वो कुछ एज सच मटीरियल जो है वो अप्रूव नहीं होते और ये बालों को आहिस्ता आहिस्ता वीक कर सकते हैं और फिर इनको चेंज करते रहना जो है ये इसको और भी स्टिमुलेट कर सकता है।
ठीक है,
या फिर ऐसे अफराद जो कि बहुत ही गर्म पानी से जो है बाथिंग करते हैं उस गर्म पानी की वजह से भी जो है बाल कमज़ोर हो सकते हैं।
ठीक है,
या फिर ऐसे अफराद जो कि आप जिस तरह के हमने कहा डेंड्रफ जिनको है उनको चाहिए कि वो अपने डेंड्रफ जो है उसको कम करें या अपने कोई मुख्तलिफ ऑयल इस्तेमाल करें शैम्पूज़ का इस्तेमाल करें क्योंकि डेंड्रफ जो है वो इनडायरेक्टली बालों को कमज़ोर कर सकती है।
ठीक है,
और इसके अलावा आप कह लें कि मुख्तलिफ जो ये बालों को इस तरह क्या उसको कहते हैं
कर्ली करने के लिए जो किया जाता है
बिल्कुल
उसके लिए
प्रेस का इस्तेमाल किया जाता है वो जो है वो बालों के लिए ठीक नहीं है।
कभी कभार तो ये भी सुनने में आया कि वो जो कर्ली करने के लिए बाल लपेटे जाते हैं उस प्रेस के लिए वो अक्सर औकात जो है वो जल भी जाते हैं।
बिल्कुल जल भी जाते हैं वो एट द स्पॉट जलने के अलावा बालों का जो लॉन्ग टाइम उसके ऊपर इफेक्ट है वो भी बहुत नेगेटिव है। यही वजह है कि उससे भी अवॉइड करना चाहिए। तो मुख्तलिफ जो आप कह लें कि हमारे घर के अंदर ही जो हमारे रूटीन में जो है मुख्तलिफ जो बिहेवियर हैं अगर हम उनको चेंज कर लें तो हो सकता है कि बालों के जो गिरने की परसेंटेज है वो कम हो जाए।
डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, गुफ्तगू को जारी रखेंगे हम लोग इंशाल्लाह। यहाँ वक्त हुआ रुबाब के पास जाने का और देखते हैं रुबाब जो है हमारे लिए क्या जो है तस्वीर आप लेके आई हैं, बड़ी खूबसूरत तस्वीर लग रही है। क्या
बहुत शुक्रिया खुर्रम, बहुत शुक्रिया। आपने अक्सर सुना होगा कि हमारे बड़े बुजुर्ग हमें कहते हैं कि बेटा हमेशा खुश रहो, या ये भी कहते हैं कि बहुत से दानिशमंद कहते हैं कि खुश रहना इंसान के लिए वो है बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है वो मैं आपको बताती हूँ। कहते हैं जो लोग खुश रहते हैं उनमें एंजाइटी और स्ट्रेस बहुत कम होती है, इसके अलावा वो लोग डरते भी बहुत कम हैं। इसके अलावा ये कहा गया है जो लोग खुश रहते हैं उस खुश रहने के दौरान उनके जिस्म से ऐसे ख़ास किस्म के केमिकल जो हैं वो खारिज होते हैं जिससे उनके अंदर एक अच्छी फीलिंग एक अच्छा एहसास जो है वो उजागर होता है। इसके अलावा ये भी कहा गया था कि जो लोग खुश रहते हैं उनके जिस्म में एक हार्मोन है एंड्रोफिन्स के नाम से और बहुत से ऐसे केमिकल्स भी हैं वो निकलते हैं उनके जिस्म से जो उनको कैंसर की बीमारी से बचाते हैं और उनके जिस्म के अंदर जो अंदरूनी जख्म होते हैं वो उनको भी भरते हैं। कहा गया है अगर आप खुश हैं तो आप अपने अतराफ के लोगों को भी खुश कर रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप खुश रहें। इसके अलावा ये भी कहा गया है कुछ ऐसे हारमोन्स आपके जिस्म से निकलना शुरू होते हैं या बनना शुरू होते हैं जो आपके ब्लड प्रेशर को एकदम कम कर देते हैं। इसके अलावा कहा गया है खुश रहने से आपके जिस्म में एक खास किस्म की एनर्जी मिलती है, वो ऐसी एनर्जी जो आपको नए नए काम करने पे मजबूर करती है या आगे बढ़ने की और हिम्मत देती है। और आखिरी बात ये भी कहा गया कि खुश रहने वाले अफराद जो हैं उनकी उम्र जो है वो बाकी ऐसे अफराद से ज़्यादा जो है वो लंबी होती है। खैर नाज़रीन, तो आप भी खुश रहिए ताकि आपकी उम्र भी लंबी हो। लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और कुछ खाने पीने की मज़ेदार बातें। जी नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं, कुछ मीठी मीठी बातें करते हैं आड़ू के मुतल्लिक। कहा जाता है आड़ू में बीटा कैरोटीन होता है जो आपकी आंखों के लिए बहुत बहुत मुफीद साबित होता है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि आड़ू में विटामिन सी होता है जो आपके जिस्म के निज़ाम दिफाई को और भी बेहतर करता है। कहा गया है विटामिन B17 इसमें मौजूद यानी B17 इसमें मौजूद होता है जो कैंसर बनाने वाले सेल को ख़त्म कर देता है। इसके अलावा कहा गया है इसमें फाइबर है जो आपके निज़ाम हाजमे को और भी बेहतर करता है। ये भी कहा गया है कि आड़ू जो है आपके जो सेल होते हैं अगर उनको कोई नुकसान पहुंच रहा है आड़ू खाने से आपके सेल जो है वो दोबारा तंदुरुस्त हो जाते हैं। कहा गया है इसमें खास किस्म के न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके जो जिल्द को है और भी खूबसूरत और साफ सुथरा रखती है। ये भी कहा गया है आड़ू के अंदर जिंक कॉपर और विटामिन ई भी मौजूद है, तो आप आड़ू खाइए और सेहतमंद रहिए। चलते हैं खुर्रम की तरफ ताकि वो अपनी गुफ्तगू को जारी रख सकें। जी खुर्रम,
बहुत शुक्रिया रुबाब। मैं सिर्फ नाज़रीन को ये बताते चलूँ कि शायद बहुत सी चीज़ें हम लोग अपने प्रोग्राम में ये जो LCD वाला हमारा सेगमेंट है इसमें लेके आते हैं जो शायद जो है आपको ऐसा लगे कि बहुत आम सी चीज़ होती हैं। बात ये होती है कि आजकल ज़माना इतना तेज़ है कि हर किसी के पास टाइम नहीं होता कि वो इंटरनेट पर बैठ के सर्च करे कि आड़ू के क्या फ़ायदे हैं या खुश रहने के क्या फ़ायदे हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं यही चीज़ें जो बहुत मामूली हैं लेकिन यह है कि हमारे सामने होती हैं और हम लोग जो है उन पर शायद जो है वक्त ना दें उनको या उनको अहमियत नहीं देते। तो हम यहाँ सुबह सवेरे आपकी खिदमत में पेश करते हैं कि आपके जहन में वो चीज़ें बैठती जाएँ, यादावरी होती जाए, बार बार हम बताएँ ताकि वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी की आदत बन जाए। बहरहाल चलते हैं डॉक्टर ज़हीर अब्बास के पास। डॉक्टर साहब वक्त जो है महदूद रह गया क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा बातें कर ली हैं, तो आपके पास जो है वक्त कम है। और क्या जो है आखिरी में आप क्या कहना चाहेंगे नाज़रीन को कि वो कैसे अपने बालों को जो है मजबूत और गिरने से बचा सकते हैं?
जी, जिस तरह अभी रुबाब ने कहा कि खुश रहना जो है
जी
ये बहुत ही इसका बदन के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट है।
बिल्कुल सही,
खुश रहने की वजह से आप अपने बालों को गिरने से भी रोक सकते हैं।
अच्छा, ज़बरदस्त।
यानी अगर ऐसा कोई फर्द है जो कि हमेशा खुश रहता है उसके बालों की जो गिरने की परसेंटेज है वो बहुत ही कम होगी, चाहे वो एंड्रोजेनेटिक एलोपीशिया में मुबतला हो चाहे किसी और बीमारी में। यानी उसके अंदर कोई बीमारी हो भी तो उसकी जो गिरने की शरह है वो बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रेस जो है इसका बहुत ही अहम रोल है बालों के ऊपर, ना सिर्फ बालों के ऊपर बल्कि जिस तरह के इन्होंने इशारा किया पूरे बदन के ऊपर, हमारी जिल्द के ऊपर, हमारे नाखनों के ऊपर। और बालों के ऊपर जो इसका इफेक्ट है वो इस तरह होता है कि हमारे बाल जो हैं उनके हर जो बाल है वो एक ख़ास फेज़ के अंदर ग्रो कर रहा होता है।
ठीक है,
उसका जो एक फेज़ है जिसको हम एनाजिन कहते हैं, एनाजिन फेज़ तकरीबन 3 साल से लेकर 5 साल तक रहता है, हर बाल जो है उसके अंदर इस स्टेज के अंदर रहता है। और ये आप कह लें कि एक ऐसी फेज़ है जिसमें ग्रो कर रहा होता है बाल, यानी बाल आपके जो है वो लंबे हो रहे होते हैं और गिरने से जो है वो बच रहे होते हैं। इसके बाद लेकिन ऐसा फ़र्द जो जिसको कोई स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, कोई भी इस तरह का मसला है, तो ऐसा शख्स जो है इसका जो एनाजिन का जो फेज़ है जो कि 3 से 5 साल तक वो नॉर्मल हालात में होगा वो हो सकता है कि बहुत ही कम हो जाए और चेंज हो जाए टेलोजन फेज़ में। टेलोजन फेज़ वो फेज़ है जिसमें आप बाल जो है वो अगली नेक्स्ट स्टेज में जाके आके गिर जाएगा, और उसको हम केटाजन फेज़ कहते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि ऐसा कोई शख्स जिसको स्ट्रेस है या डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, वो शख्स जो है जैसे ही इसमें मुबतला होगा उसके बाल जो हैं वो एनाजिन से फौरन जो है वो टेलोजन फेज़ और फिर केटाजन फेज़ में चले जाएंगे और बाल जो है उनकी जो उम्र है वो कम हो जाएगी, और यही वजह है कि वो उनके बालों की जो गिरने की शरह है वो ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन यह है कि एक यहाँ पे पॉजिटिव जो बात है वो यह है कि इसमें जिस स्ट्रेस की वजह से जो बाल गिरते हैं
है।
वो आपको वापस दोबारा आपके पास आएंगे, ऐसा नहीं है कि वो परमानेंट नहीं गिर रहे, जिस तरह के एंड्रोजेनेटिक एलोपीशिया में या मुख्तलिफ और बीमारियां जो हैं उनमें ऐसा पॉसिबल है, लेकिन इसकी वजह से बाल जो है आपके उसके अंदर जो एक घनापन है वो कम हो जाएगा, लेकिन एट लास्ट जो है फाइनली आपके बाल जो है वो फिर से वापस आएंगे।
डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, और जो है बड़े ही मुफीद मौजू के पर जो है पर आपने प्रोग्राम किया, और कुछ ऐसे नुकात थे जो हमारे, जैसे मैंने कहा, हम अक्सर चीज़ें होती हैं जो हमारे सामने होती हैं लेकिन हम उनका अहमियत नहीं देते। ये स्ट्रेस का जो मौजू है ये इसको जो है बिल्कुल अहमियत नहीं हमारे यहाँ दी जाती, कहा जाता है स्ट्रेस की बहुत सी मुख्तलिफ बीमारियाँ बहरहाल हो जाती हैं। डॉक्टर साहब शुक्रिया अदा करता हूँ, आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, इंशाल्लाह जो है हम आपको दोबारा जो है जहमत देंगे, दोबारा आएँ और जो और मुख्तलिफ अहम मौजू हैं जिल से जुड़े उन पर बात करें। बहुत शुक्रिया
जी, वेलकम
जी रुबाब,
बहुत शुक्रिया खुर्रम। डॉक्टर ज़हीर अब्बास आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने बालों के बारे में इतनी मुफीद जानकारी जो है वो हमें दी। खैर नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ आपको सैर कराने का अलबोर्स के खूबसूरत पहाड़ों का। जी हाँ, लेते एक वक्फा, फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी, और आपने खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला देखा अलबोर्स का, उम्मीद करता आपको ये मनाजिर पसंद आए होंगे। जी, और हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद है मौलाना सैयद ऑन मोहम्मद नकवी साहब, और मैं इनकी खिदमत सलाम अर्ज़ करती हूँ। मौलाना साहब बहुत बहुत खुश आमदीद, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे प्रोग्राम के लिए निकाला।
मौलाना साहब, हमारे हफ्ते का मौजू जैसे कि आपको मालूम है कि चल रहा है कि अच्छा रहनुमा कौन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कैसे उसका इंतखाब किया जाए, तो मौलाना साहब मैं चाहूँगा कि आप खुद जो है बहरहाल इस मौजू के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें।
देखिए, इस निज़ाम जिस निज़ाम में हम जिंदगी कर रहे हैं, जिस कायनात में हम रह रहे हैं, इस कायनात को अल्लाह ने खल्क किया है, और ये इंसान, ये कायनात जो अल्लाह का मखलूक है, अल्लाह जो हकीम है, उसने हिकमत के तौर पर खल्क किया है, अपनी हिकमत के जरिए से। तभी है कि जो खालिक है वो बेहतर जानता है कि इस निज़ाम हस्ती को, इस इन लोगों को चलाने के लिए किस तरीके से चलाया जा सकता है वो कानून बेहतर जानता है।
सही।
तो फिर इसकी इस दुनिया में इस इंसानों की रहबरी के लिए या खुदा बेहतर जानता है या वो हजरात वो लोग के जो खुदावंद मुताल के मकतब और दीन से तरबियत पाए हैं वो बेहतर चला सकते हैं।
सही।
जो लोग इस इलाही निजाम से हटकर रहबर बनेगा वो इस बशरियत के काफले को आगे नहीं बढ़ा सकता, खून और गारत और कत्ल व फसाद तो फैला सकता है। लिहाजा रहनुमा और रहबर को खास करने के लिए जरूरी है कि वो रहबर और रहनुमा जो है वो खुदाई निजाम को जानता हो।
ठीक मौलाना साहब, कितनी आपके ख्याल में कितनी जरूरत है कि इंसान अपनी जिंदगी में एक रहबर को इंतखाब करे? मैं सियासी रहबर की बात नहीं कर रहा, मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि जिंदगी गुजारने के लिए, अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए आया जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी में किसी को आइडियल रखें, किसी शख्स को कहें कि हाँ जी ये शख्स जो है मैं इसकी पैरवी करता हूँ, जरूरी है ये चीज?
देखिए ये तारीख में होता आया है कि इंसान अगर कामयाब होना चाहता है उसके लिए जरूरी है कि किसी को अपने लिए किसी को अपने लिए आइडियल बनाए।
ठीक है।
ये फारसी जबान में भी बोला जाता है कि राह चनान रो के राह रवान रफ्तन।
सही।
अपनी जिंदगी गुजारनी है तो ऐसे चलो जैसे बड़े चले हैं।
बिल्कुल।
सही। अच्छा
तो इंसान जब तक कोई आइडियल ना हो तो कैसे वो रास्ता इंतखाब करेगा, कैसे कामयाब होगा?
ठीक है।
तो जरूरी है कामयाब के लिए जरूरी है कि कुछ ना कोई आइडियल बनाया जाए जिनको जिससे वो अपने लिए बेहतरीन प्रोग्राम बना सकता है, कामयाबी का रास्ता इंतखाब कर सकता है। और अगर किसी को आइडिया नहीं बनाता वो यहीं से उलझ कर रह जाएगा, समझ नहीं पाएगा कि किस रास्ते का इंतखाब करूं, कैसे कामयाब बनूं, कैसे मुवफ़क हो सकता हूं। लिहाजा आइडियल का होना जरूरी है, लेकिन ये याद रहे कि आइडियल इंसान अभी भी अच्छे इंसान को इंतखाब कर सकता है जब उसकी सही से अच्छी तरबियत हुई हो, दीन को सही से जानता हो। कभी कभी ऐसा होता है कि माशरे में जवान या कोई ऐसे इंसान को आइडियल बना लेते हैं कि वो मेरी जिंदगी के लिए अच्छा नहीं है,
ठीक है,
या इंसान के लिए अच्छा नहीं है। लिहाजा आइडियल चुनने के लिए या रहनुमा चुनने के लिए जरूरी है कि खुदा और दीन नजर में होना चाहिए ताकि इंसानियत हाथ से न जाए।
ठीक।
वही आइडियल अच्छा होता है जो मेरी इंसानियत को शबाब पर लाए।
बिल्कुल। अच्छा मौलाना साहब, यही सवाल अगला मेरा यही था जिस पे आपने अभी जवाब ही इसका दे दिया कि अच्छा आइडियल वो होना चाहिए जो इंसानियत की तरफ आपको लेके जाए। अच्छा मौलाना साहब, लेकिन जो है बारा ये देखने में मिलता है कि आजकल जो है खास हम नौजवान नस्ल में ये देखने में मिलता है कि उनके आइडियल जो हैं वो समझ नहीं पाते कि आइडियल है तो है क्या, जैसे कि रुबाब ने इस प्रोग्राम शुरू में भी कहा कि आइडियल है क्या, ये इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें कि एक शख्स अगर उठ खड़ा होता है वो कहता है जी मुझे आइडियल ढूंढना है, तो आइडियल का मतलब क्या है और आइडियल कैसे उसको ढूंढे वो?
देखिए आइडियल का मतलब ये है कि जब इंसान चाहता है कि मुझे कहीं ना कहीं पहुंचना है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको कहीं ना कहीं पहुंचना हो, कहीं भी पहुंच जाए।
ठीक है।
देखिए जब खुदावंद आलम ने इंसानियत का सिलसिला शुरू किया है तो वहीं से आइडियल पेश किया है खुदावंद आलम ने, जनाब आदम को पेश किया है और तमाम मलाइका के सामने, शैतान के सामने, ये जो आइडिया इंसानियत का पेश किया जिसको हजरत आदम कहते हैं, वहीं पे बताया है कि ये आइडिया इसलिए बनाया गया क्योंकि ये करामत रखता है।
ठीक है।
ये इंसान पाक है, ये रहनुमा बन सकता है, लोगों का हाथ पकड़ सकता है
जी।
तो और इंसानों की खिदमत कर सकता है।
सही।
तो खुदा के उस निजाम से उस काम से हम समझ सकते हैं कि आइडियल उसी को बनाना चाहिए जो इंसानियत की खिदमत कर सकता है।
सही।
जो माशरे को बेहतरीन डगर पे ला सकता है, जो माशरे में अखलाक, अमनियत और इलाही पैगाम पहुंचा सकता है, उसी को आइडियल बना सकता है।
सही।
और इंसान फकत दुनिया में 50-60 साल जीने के लिए नहीं आया है।
बिल्कुल।
आइडियल 50 साल के लिए मैंने पा लिया फिर मैं खत्म हो गया और खाक बन गया हूँ, ऐसा नहीं है।
ठीक है।
इंसान जो अबदी है उसके लिए जरूरी है कि आइडियल उसको बनाए जो अबदी लोग होते हैं।
बिल्कुल सही।
हमेशा के लिए होते हैं।
बिल्कुल सही।
या डायरेक्ट उनको बनाए या फिर अगर उनको नहीं बनाना चाहता तो उनको बनाए जो उस मकतब का रहने वाला है, जो अहले बैत के مکتب میں تربیت پایا ہے اس کو آئیڈیل بنا سکتے ہیں.
بہت خوبصورت مولانا صاحب, بہت خوبصورت. اصلی بات جو ہے آپ آخری دو جملوں میں کر گئے. شکریہ ادا کرتا ہوں مولانا سید اون محمد تقوی صاحب, آپ نے پروگرام صبح زندگی کو وقت دیا اپنی خوبصورت باتوں سے جو ہے ہمارے پروگرام کو اور بھی خوبصورت. بہت شکریہ, بہت شکریہ. جی بالکل, جو ہے یہاں پر مولانا صاحب سے ہماری گفتگو ہوئی, اور چھوٹا سا ایک وقفہ لینا, اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.
جی ناظرین, دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں, اور میں کل کے مناسبت سے ناظرین کو بتائی چلوں اور مبارکباد بھی دیتے چلوں. ناظرین کل 13 رجب ہے, مولا کائنات امیر المومنین حضرت علیہ علیہ السلام کی ولادت کا بھی دن ہے, اور ایران میں جو ہے مردوں کا خاص دن, یا بول سکتے ہیں فادرز ڈے جو ہم بولتے ہیں, وہ بھی ہے. بالکل,
تو یہ جو ہے بہرحال ایک بڑا ہی اچھا اور مبارک دن ہے, اور بہت سے لوگ جو ہے اکثر یہ سوچ رکھتے ہیں کہ ایسے مبارک دنوں میں اچھے کام شروع کیے جائیں اور برے کاموں کو یا بری عادات کو چھوڑ دیا جائے. بہرحال بہت بہت آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, مولا کائنات امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی ولادت کے سلسلے پیشا پیش کل کا پروگرام بھی ہمارا اسی سلسلے میں ہوگا
انشاءاللہ.
قصور صاحب جو ہے انشاءاللہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے, اور اسلام آباد اسٹوڈیو سے جو ہے ہمارے ساتھ احسن صاحب موجود ہوں گے, ان سے بھی ہماری گفتگو رہے گی اسی موضوع پر. انشاءاللہ پروگرام ہمارا کل دیکھنا مت بھولیے گا. کل تک کے لیے مجھے خرم گردیزی اور رباب منصوری کو پروگرام صبح زندگی سے اجازت دیجیے.
خدا حافظ.